ग्रंथा श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 13 ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र श्लोक संख्या 23 श्लोक संख्या की चर्चा करेंगे हम 12 से 23 तक का बोर्ड पर श्लोक संख्या 23 लिखी है तो पहले श्लोक संख्या 11 तक चर्चा कर चुके हैं श्लोक संख्या 12 से पढ़ना शुरू करेंगे इन श्लोकों में कहीं भी तात्पर्य नहीं है केवल अनुवाद है और श्लोक संख्या 12 का अनुवाद 12 और 13 का अनुवाद इंद्र ने साक्षात ब्रह्म हत्या को एक चंडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपना पीछा करते देखा वह अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी और उसके शरीर के सभी अंग कांप रहे थे यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर तथा वस्त्र रक्त से सने थे उसकी श्वास से असहाय मछली की सी दुर्गंध निकल रही थी जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था उसने इंद्र को पुकारा ठहरो ठहरो तात्पर्य जब मनुष्य को यक्ष्मा रोग हो जाता है तो प्रायः रक्त वमन होता है जिससे कपड़े रक्त से सन जाते हैं श्लोक संख्या 14 हे राजन इंद्र पहले आकाश की ओर भागा किंतु उसने वहां भी उस ब्रह्म हत्या रूपणी स्त्री को अपना पीछे करते देखा जहां कहीं भी वह गया यह डायन उसका पीछा करती रही अंत में वह तेजी से उत्तर पूर्व की ओर गया और मानसरोवर में घुस गया श्लोक संख्या 15 सदैव यह सोचते हुए कि ब्रह्म हत्या से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो राजा इंद्र सबों से अदृश्य रहकर सरोवर में कमल नाल के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा अग्निदेव उसे समस्त यज्ञों का उसका भाग लेकर देते किंतु वो अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत थे अतः इंद्र एक तरह से भूखों मर रहा था श्लोक संख्या 16 जब तक राजा इंद्र कमल नाल के भीतर जल में रहा नहुष अपने ज्ञान तप और योग के बल के प्रभाव से स्वर्ग लोक का शासन चलाता रहा किंतु शक्ति और ऐश्वर्य के मत से अंधा होकर उसने इंद्र की पत्नी के साथ रमण करने की अवांछित प्रस्ताव रखा इस प्रकार वह एक ब्राह्मण द्वारा शापित हुआ और बाद में सर्प बन गया श्लोक संख्या 17 समस्त दिशाओं के देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए चूंकि इंद्र की रक्षा मानस सरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंत में भगवान विष्णु की पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए तब ब्राह्मणों ने उसे पुनः स्वर्ग लोक में बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया श्लोक संख्या 18 हे राजन जब इंद्र स्वर्गलोक पहुंच गया तो साधु ब्राह्मण उसके पास गए और अश्वमेध यज्ञ के लिए उसे दीक्षित किया जिसका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था श्लोक संख्या 19 और 20 ऋषि तुल्य ब्राह्मणों द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ से इंद्र अपने समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो गया क्योंकि उस यज्ञ में उसने श्री भगवान की पूजा की हे राजन यद्यपि उसने गंभीर पाप कृत्य किया था किंतु यह यज्ञ से यह पाप कृत्य उसी प्रकार विनष्ट हो गया जिस प्रकार सूर्य के तेज प्रकाश से कोहरा नष्ट हो जाता है श्लोक संख्या 21, 22 और 23 श्लोक संख्या 23 दोहरा लेते हैं पठे युवाख्यानमिदं सदा बुधा षड्वन्त्यथो पर्वणि पर्वणि इन्द्रियम् धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनम् विपुञ्जयं स्वस्तयैनं तथायुषम् अनुवाद 21, 22 और 23 श्लोक का इकट्ठा है तो वही पढ़ रहे हैं इस महान आख्यान में श्री भगवान नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है भक्ति योग की महानता के संबंध में विचार व्यक्त हुए हैं इंद्र तथा वृत्रासुर जैसे भक्तों के वर्णन हुए हैं तथा पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष एवं असुरों के साथ लड़े गए युद्धों में उसकी विजय के संबंध में विवरण दिए गए हैं इस आख्यान को समझ लेने पर सभी पाप बंधनों से छुटकारा मिल जाता है विद्वानों को सलाह दी जाती है कि इस आख्यान को पढ़ें जो ऐसा करेगा उसकी इंद्रियां तीक्ष्ण होंगी उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा और यश चारों ओर फैलेगा उसके समस्त पाप बंधन कट जाएंगे उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उसकी आयु बढ़ेगी चूंकि यह आख्यान
सभी तरह से कल्याणकारी है, अतः विद्वान व्यक्ति को इसको प्रत्येक शुभ उत्सव के अवसर पर पुनः पुनः सुनते हैं।
हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है और विशेष स्वागत करते हैं इस भक्ति विनोद प्रभु जी का, और उनसे कृपा की याचना करते हुए इस अध्याय पे कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो ये अध्याय 13वां अध्याय है छठे स्कंद का, और अध्याय का नाम है ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र, और इसका अंतिम श्लोक है। और अंतिम श्लोकों में इस पूरे अध्याय का श्रुति फल बताया गया है। तो इस श्रुति फल एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि श्रुति फल का अर्थ है कि इस अध्याय को पढ़ने सुनने से श्रोताओं को क्या लाभ प्राप्त होगा। इस महान आख्यान में भगवान नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है, भक्ति योग की महानता के संबंध में विचार व्यक्त हुए हैं, इंद्र तथा वितरसो जैसे भक्तों के वर्णन हुए हैं, और पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष एवं असुरों के साथ लड़े गए युद्ध में उसकी विजय के संबंध में विवरण दिए गए हैं। इस आख्यान को समझ लेने पर सभी पापबंधों से छुटकारा मिल जाता है, सभी पापबंधों से छुटकारा मिल जाएगा अगर हम इस आख्यान को सुनेंगे। और विद्वानों को सलाह दी जाती है, आप सबको सलाह दी जा रही है सुखदेव गोस्वामी जी की तरह, कि इस आख्यान को पढ़े। छठे स्कंद में है तो सभी विद्वानों को सलाह दी जा रही है कि इस आख्यान को पढ़े। जो ऐसा करेगा उसका क्या होगा, उसकी इंद्रियां तीक्ष्ण हो जाएंगी, तीक्ष्ण का होता है परफेक्ट हो जाएंगे, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा, यश चारों ओर फैलेगा, उसके समस्त पाप बंधन कट जाएंगे, उससे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उसकी आयु बढ़ेगी। चूंकि यह आख्यान सभी तरह से कल्याणकारी है, अतः विद्वान व्यक्ति इसको प्रत्येक शुभ उत्सव के अवसर पर पुनः पुनः सुनते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंध के अंतर्गत ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रत्येक शुभ उत्सव के अवसर पर विद्वान व्यक्ति इसको पुनः पुनः पढ़ते हैं, तो जिस दिन इसको पढ़ा सुना जाए उसी दिन उत्सव है, तो आज भी एक उत्सव हो गया। तो ये अध्याय का नाम था ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। पिछले अध्याय 12 संख्या थी, उसका अध्याय का नाम था वृतासुर की यशस्वी मृत्यु। तो इस अध्याय में और पिछले कुछ अध्यायों से हम वृतासुर और इंद्र के इस प्रसंग को पढ़ रहे और सुन रहे हैं, और हम देखते हैं कि दोनों ही भक्त हैं, लेकिन दोनों की भक्ति की श्रेणी अलग अलग है, कैटेगरी अलग अलग है। वृतासुर बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है, वे केवल भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। और इंद्र भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन इंद्र अपना भौतिक अस्तित्व चलाए रखना चाहते हैं। इंद्र चाहते हैं कि उनका भौतिक जीवन सुखी हो, वो इंद्र लोक में स्वर्ग में भोग कर सके। तो दोनों ही भक्त हैं, लेकिन दोनों की इच्छाओं में अंतर है। तो उसका हम प्रभाव देखते हैं क्या हुआ, कि वृतासुर जो निष्काम थे वो वीर गति को प्राप्त कैसे हुए, युद्ध में उनकी मृत्यु हुई और सीधा अपने इष्ट संकर्षण के धाम वैकुंठ लोक में चले गए। और अध्याय का नाम हुआ वृतासुर की यशस्वी मृत्यु, द ग्लोरियस डेथ ऑफ वृतासुर। वो तो भगवत धाम चले गए, पीछे से कौन रह गए, इंद्र। अब वो पूरे स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन इस अध्याय का क्या नाम है, ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। वो पीड़ा में है और पीड़ा में इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, एक ब्राह्मण की हत्या की। वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी बुद्धिमान जीव को किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। और भक्तिविनोद ठाकुर जी सज्जन तोष में बताते हैं कि मुख्यतः दो प्रकार की हिंसा होती है, एक पशुओं के प्रति और दूसरा मनुष्यों के प्रति। पशुओं के प्रति भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसका भी दंड मिलता है, लेकिन मनुष्यों के प्रति की गई हिंसा और ज्यादा संकटदायक है, खतरनाक है। और मनुष्यों में की गई हिंसा और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब उस मनुष्य का स्तर, उसकी चेतना बहुत ऊंची हो, यानी किसी ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति की गई हिंसा बहुत गंभीर है। श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव। तो राजा इंद्र ने जो हिंसा की, जो वध किया वृतासुर का, और वृतासुर ब्राह्मण ही नहीं परम वैष्णव, भगवान के शुद्ध भक्त, तो इसका बहुत रिएक्शन, हैवी रिएक्शन मिलता है। और इंद्र बहुत पीड़ित थे, उन्होंने क्या देखा कि एक चंडालनी उनके पीछे पड़ी, जो कि चंडाल स्त्री के समान प्रकट होकर
उनका पीछा कर रही थी, अत्यंत वृद्ध थी और उसके शरीर के सारे अंग कांप रहे थे और उसको टीबी का रोग था, यक्ष्मा रोग, टीबी का रोग जैसे होता है, और उसका सारा शरीर और वस्त्र रक्त से भरे हुए थे और उसके श्वास से असह्य मछली की दुर्गंध आ रही थी और वो भाग रही थी इंद्र के पीछे, ठहरो ठहरो। आप दृश्य देखिए कैसा दृश्य, तो इंद्र भाग रहे हैं बेचारे, पहले आकाश की ओर भागे तो वहां भी उनको वो पिशाचनी दिखाई दी, इधर उधर भागे सब जगह वो पिशाचनी, वृद्धा स्त्री उसके वस्त्र और शरीर खून से लथपथ, शरीर कांपता हुआ, उसके श्वास से बदबू आ रही है, पीछे भाग रही है इंद्र के। तो इंद्र भागते भागते क्या हुए, मानसरोवर पर पहुंच गए और मानसरोवर में पहुंचा के कमल की नाल की तंतुओं के अंदर रहने लगे, छिपकर 1000 वर्षों तक रहे और वहां लक्ष्मी जी की कृपा से वो अपने सारे पापों के प्रभाव से मुक्त हुए और फिर 1000 साल के बाद वो अपने इंद्रलोक में वापस गए। फिर वहां उन्होंने ब्राह्मणों के परामर्श में उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और इस तरह से पूर्ण रूप से पापों से रहित हुए। और जब 1000 वर्ष तक वो कमल के तंतुओं के अंदर थे, नहुसा देव जी इंद्र का उन्होंने पद संभाला और वो उन्होंने भी पाप कार्य किया, उन्होंने इंद्र की पत्नी सची देवी के ऊपर उसके साथ गलत संबंध स्थापित करना चाहा और उनको शाप मिला और वो सर्प बन गए। तो हम इस पूरे प्रसंग में देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि इंद्र को भक्त बनाया बताया गया है और बार बार इंद्र ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, पृथु महाराज के प्रसंग में, गोवर्धन लीला में और द्वारका की लीला में, परिजात वृक्ष लेने जाते हैं भगवान कृष्ण, हर बार वो भगवान और भक्तों के प्रति अपराध करते रहते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इंद्र की स्थिति हमसे भी निम्न है, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं हमें लगेगा, लेकिन वास्तव में भागवतम ग्रंथ में इंद्र के प्रसंग जो आते हैं इससे हमारी मानसिकता प्रदर्शित होती है, हम एक्सपोज होते हैं कि हमारे अंदर ये भोगने की वृत्ति है, भोग करने की प्रवृत्ति है। हम देख सकते हैं इस प्रसंग की शुरुआत कैसे हुई थी, इंद्र अपने राज्य में ऐश्वर्य में मदमत थे सची देवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तभी उनके गुरु उस सभा में आते हैं बृहस्पति, तो इंद्र अपने ऐश्वर्य में और भोग में इतने लिप्त थे वो गुरु का आदर करने के लिए आसन से खड़े ही नहीं हुए। तो बृहस्पति के प्रति उन्होंने अपराध किया, गुरु के प्रति अपराध किया और वो सभा से चले गए। बाद में इंद्र को पछतावा हुआ लेकिन वो बृहस्पति को ढूंढ नहीं पाए। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उनको परामर्श दिया कि विश्व रूप को अपना ब्राह्मण बना लीजिए। विश्व रूप को उन्होंने तैयार किया ब्राह्मण बनाने के लिए, तो विश्व रूप ने यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति वो कुछ असुरों को भी दे रहे थे, तो इंद्र ने उस ब्राह्मण का वध कर दिया। उस ब्राह्मण का वध करने पर भी इंद्र को भी पाप मिले, वो पाप उसके सहन करने के लिए स्त्री वृक्ष और पानी ने उनकी सहायता की। उसके बाद उनको नारायण कवच भी प्राप्त हुआ था विश्व रूप से, लेकिन त्वष्टा जो कि विश्व रूप के पिता थे उन्होंने यज्ञ करके वृतासुर की उत्पत्ति की, जो कि इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। सारे देवता लोग वृतासुर का विशाल काय देखकर भयभीत हो गए, सबने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उनको दर्शन भी दिए, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की आपने अलग अलग अवतार लेकर असुरों का वध किया है, आप वृतासुर का भी वध कीजिए। तो भगवान ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वृतासुर हमारे शुद्ध भक्त हैं, तो आप दधीचि मुनि के पास जाइए और उनसे उनकी हड्डियों से वज्रपात बनाइए। दधीचि मुनि का पहले ही सिर इंद्र काट चुके थे, तो देखिए कितनी शर्मनाक स्थितियों से इंद्र को गुजरना पड़ा भोग की प्रवृत्ति रखने के कारण। पहले अपने गुरु के प्रति अपराध किया, फिर विश्वरूप ब्राह्मण की हत्या की, फिर दधीचि मुनि जिससे इनका उन्होंने पहले सर काट दिया था अब उनके सामने उनको झुकना पड़ा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ी कि आप अपना शरीर त्यागिए और आपकी हड्डियों से हम वज्रपात बनाएंगे। तो दधीचि मुनि ने ऐसा किया, फिर उन्होंने वृतासुर के साथ युद्ध आरंभ किया। युद्ध करते करते वृतासुर ने उनको उपदेश दिया, कितनी शर्मनाक स्थिति आप देखिए, वृतासुर ने उनको उत्साहित किया, लड़ाई लड़ो, मारो मुझे, जल्दी मारो। वहां उनको अपने शत्रुओं से उपदेश सुनने पड़े और बड़ी शर्मनाक स्थिति, मारू ना मारू, सारे ऋषिगण इकट्ठे हो गए, मार दो मार दो, सब देवताओं ने उनको प्रेरित किया, उत्साहित किया, तब मार दिया। जब वृतासुर को मारने लगे तो वृतासुर उनको निगल गए, पेट के अंदर चले गए, फिर नारायण कवच का उपयोग करके वो बाहर आए, तो वृतासुर तो समाधि में चले गए। फिर 1 साल तक लगातार उनकी गर्दन काटते रहे, कितने कष्ट इंद्र भोग रहे हैं देखिए। उसके बाद उनको पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने ब्राह्मण की हत्या कर दी, फिर ये पिशाचनी उनके पीछे भाग पड़ी, फिर कमल की नाल के अंदर 1000 वर्ष तक छिपकर रहे, फिर अश्वमेघ यज्ञ किया, फिर भी उनके भोगने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी। हम आगे जाके भागवत में एक और प्रसंग देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि वृतासुर बिल्कुल निष्काम थे इसलिए शांत थे। कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, जो वृतासुर भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके अंदर इस संसार को भोगने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए पूर्ण रूप से शांत थे। वो तो इंद्र को प्रेरित कर रहे थे, मेरा वध करो ताकि मैं जल्दी से भगवद्धाम जा सकूं। और इंद्र तरह तरह की योजनाएं बनानी पड़ी और इंद्र को तरह तरह कष्ट सहने पड़े, क्योंकि इंद्र के अंदर इस संसार को भोगने की इच्छा थी। दोनों ही भक्त हैं, एक मिश्रित भक्त है एक शुद्ध भक्त है। मिश्रित भक्त की हम स्थिति देखते हैं कि वो भक्ति करते हुए भी आनंद में नहीं है। तो अगर हम भक्ति के पथ पर हैं और आनंद में नहीं अपने आप को महसूस कर रहे, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर अभी भौतिक इच्छाएं हैं, भोगने की इच्छाएं हैं। ये काम वासनाएं ही हमें कष्ट प्रदान करती हैं, हमें पीड़ित करती हैं। और जो भक्त इन वासनाओं से मुक्त हो जाता है वो हमेशा शांत और प्रसन्नचित रहता है। तो रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा देते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। अगर कोई इस संसार को भोगने की इच्छा कर रहा है, या इस संसार की पीड़ाओं से मुक्ति पाने की भी इच्छा कर रहा है, या योग सिद्धियां प्राप्त करने की भी इच्छा कर रहा है, सबके सब अपने स्वार्थ से प्रेरित हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपने बलिए जीता है वो हमेशा दुखी रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने सुख के लिए प्रयास करता रहता है वो केवल प्रयास ही करता रहता है, सुख को प्राप्त नहीं करता। तो ये शिक्षा हमें इंद्र के प्रसंग से मिलती है। शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं चैतन्य चरितामृत में कि कोई भी साधक इस स्थिति पे कैसे पहुंच सकता है, निष्काम अतैव शांत। क्योंकि हम भक्ति प्रारंभ करते हैं आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा, चार तरह के कनिष्ठ भक्त बताए गए हैं, अपने दुखों से प्रेरित होकर, धन की इच्छा से या जिज्ञासा करके, और ज्ञानवश व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं। तो बिल्कुल निष्काम वो कैसे हो सकता है? तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि निष्काम स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम ये समझ जाएं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर हम समझ जाएं वास्तव में हम जो भी यज्ञ करते हैं, तपस्याएं करते हैं, जो भी मानवीय क्रियाएं हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उन सब के भोक्ता एंजॉयर कृष्ण है। इंद्र इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। गोवर्धन लीला में भी जब ब्रजवासियों ने यज्ञ गोवर्धन को प्रसन्न करने के लिए किया तो इंद्र रुष्ट हो गए। उन्होंने सोचा भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मैं भोक्ता हूं और एक कौन आ गया जिसने मेरे भोग में विघ्न उत्पन्न किया। तो वो भगवान से उन्होंने भगवान को अपना शत्रु समझना शुरू कर दिया और भगवान के परम भक्त ब्रजवासियों को उन्होंने संहार करने की इच्छा की। इतना बड़ा अपराध क्यों? भोक्ताराम, वो अपने आप को भोक्ता समझ रहे थे। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि हम जो भी जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण भोक्ता हैं। हमारे हर कार्य के, हर एक्टिविटी के जो एंजॉयर हैं वो कृष्ण हैं। हम लोग जप भी करते हैं, हम लोग जप शुरू करते हैं तो शुरू में बताया गया चैंट एंड बी हैप्पी। हमने ये तो बड़ा अच्छा, मैं दुखी हूं चैंटिंग करूंगा सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वास्तव में चैंट एंड बी हैप्पी का मतलब है कि चैंटिंग करनी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हैप्पीनेस सुख तभी आएगा जब हम भगवान को सुख देंगे। सुख के लिए कोई बाईपास नहीं है कि भगवान के सुख को बाईपास करके हम सुखी हो जाएं। तो जब हम भगवान को सुख देंगे, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे, तब हम सुखी होंगे। तो चैंट एंड बी हैप्पी हमें काफी समय तक समझ में नहीं आता। चैंटिंग कर रहे हैं अपने सुख के लिए, जब तक अपने सुख के लिए चैंटिंग करेंगे कि यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मी, सब यज्ञों में जप यज्ञ ही है, और ये यज्ञ अपने सुख के लिए करेंगे, भोक्ताराम यज्ञ तपसा नहीं। जो भी तपस्या कर रहे हैं, एकादशी का निजला व्रत रख रहे हैं, सब रख रहे हैं किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा ना हो एकादशी का हम निजला व्रत रख रहे हैं, बाकियों को खूब खाते हुए देख रहे हैं, बोले निकृष्ट जीव हैं, क्या खाते रहते हैं एकादशी के दिन ही। तो नादान स्वामी महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि ये है फास्टिंग फॉर द टंग, फीस्टिंग फॉर द ईगो। जीवा के लिए तो फास्टिंग है, व्रत है, लेकिन हमारे अहंकार के लिए बहुत बड़ा फीस्ट है। देखो पूरे समाज में केवल मैं ही निचला रख रहा हूं और मैं ही जागरण कर रहा हूं, मैं कितना उच्च कोटि का भक्त हूं। तो ये भोक्ता, हम उस तपस्या को भोग रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं जब हमें अहंकार आ जाता है तो तपस्या का फल नष्ट हो जाता है। तो ये भोक्ता रहने तपस्या, जो हम तपस्या कर रहे हैं, जो हम यज्ञ कर रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और भोक्ता सर्वलोक महेश्वरम, इंद्र सोच रहे थे ये मेरा लोक है, इस पे असलों का राज्य कैसे होगा। लेकिन अगर जाना जाए मृतासुर को ऐसी कोई पीड़ा नहीं थी, मृतासुर केवल भगवत धाम वापस जाना चाहते थे, लेकिन इंद्र अपना प्रभुत्व जमाना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते थे इंद्र लोक पर। सर्वलोक, सब लोगों के स्वामी कृष्ण है, सब लोगों के स्वामी, हमारे LIG MIG फ्लैट के स्वामी भी कृष्ण है, हमारे पास प्रॉपर्टी के कागज भी हो सकते हैं उसमें हमारा नाम लिखा हो, रजिस्ट्री पूरी हमारे नाम हो, लेकिन असली स्वामी कौन है? कृष्ण। जब हम घर में अर्च विग्रह रखते हैं, गौर निताई रखते हैं, मंदिर बनाते हैं, इसका अर्थ यही है कि अब घर के स्वामी कौन है? कृष्ण। इस भावना को अनुकूल करना है, नहीं करेंगे हम शांत नहीं हो पाएंगे। ये भगवद गीता का सबसे प्रारंभिक शिक्षा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। भोक्ता रहने के तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, श्री कृष्ण ही सबके असली हितेशी हैं। हम सोचते हैं हम किसी की मदद कर देंगे तो हम उसके हितेशी हैं, हम सर्वभूतानाम तो नहीं, कम से कम अपने परिवार वालों के तो हितेशी ही हैं। सारे परिवार वालों को मैं पाल रहा हूं, इंद्र सोच रहे थे सारे देवता मुझ पर निर्भर हैं तो मुझे इनका हित करना है, इसलिए इनके हित के लिए मुझे युद्ध लड़ना है। किसी भी व्यक्ति से, पारिवारिक व्यक्ति से आप पूछेंगे आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, बोले अपने लिए थोड़ी करता हूं, पत्नी और बच्चों के लिए करता हूं, मैं तो बस दो जोड़े कपड़े में संतुष्ट हूं, पत्नी और बच्चों के लिए कर रहा हूं, या ये थोड़ा सा और बढ़ जाए अपने लिए नहीं कर, अपने देश के लिए कर रहा हूं। तो मैं और मेरा में हम लगते हैं, सोचते हैं कि मैं अपनों का सुहृद हूं, वास्तव में कृष्ण ही सुहृद हैं, कृष्ण सबके हितेशी हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे कि मैं अपने संबंधियों का, अपने मित्रों का, अपने देशवासियों का सुहृद हूं, तो मैं उसको उनको अपने ढंग से, अपने तरीके से उनकी देखभाल करना चाहूंगा, मैं कृष्ण की इच्छाओं की, कृष्ण की योजनाओं पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन कृष्ण ही सबके पालन करता है। तो इस श्लोक को हमें अच्छे ढंग से समझना है, प्रभुपाद कहते हैं इसको समझें और इसका प्रचार करें, उसके इसके द्वारा ही हमारे भोगने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। इस श्लोक को हमें अच्छे ढंग से समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए, तभी हम खुद कन्विंस हों इस श्लोक के विषय में, अपने जीवन में उतारें और दूसरों को समझाएंगे, तभी हमारे अंदर भोगने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कृष्ण से कुछ अपेक्षा रखें कि आपने बोला था इस श्लोक को अपने जीवन में उतारो तो शांति प्राप्त होगी, इच्छा करते रहे, तो ये अपेक्षा नहीं रखनी। प्रभुपाद कहते हैं अपेक्षा नहीं रखनी कि कृष्ण हमारी सेवा करेंगे, हमें केवल कृष्ण पर निर्भर रहना है। जैसे छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से कुछ अपेक्षा नहीं रखता कि अब सर्दी आने वाली है, मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत अच्छा कंबल लेके आएंगे, गर्मियों में मेरे माता पिता पानी में नहलाएंगे। बच्चा, छोटा बच्चा, उसको कोई ऐसी इच्छा नहीं होती, उसको मालूम है जो आवश्यक है मेरे माता पिता अवश्य करेंगे, अवश्य रक्षिपो कृष्ण विश्वास पालन, भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं निश्चित रूप से कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इस विश्वास का पालन हमें करना चाहिए। तो इस ढंग से हम निष्काम हो सकते हैं। अगर हम निष्काम नहीं हैं और कामनापूर्ण भक्ति करते रहेंगे तो हमें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। वास्तव में मैं इस संसार को भोग लूं ये बहुत ही पाप बुद्धि है, सिंफुल मेंटेलिटी बताते हैं इसको, कि मैं इस संसार को भोग सकता हूं, और इसी पाप बुद्धि के कारण हमें बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं जिसके पास ये शरीर है इसका मतलब वो पापी है, सीधी सी बात है, बॉडी मीन्स सिंफुल। अगर हमारे पास कोई भी शरीर है, किसी भी योनि में है, इसका मतलब हमने पाप किया हुआ है। दिखने में हम बड़ी पुण्य आत्मा हो सकते हैं लेकिन पाप के कारण ही ये शरीर मिलता है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसको तरह तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं, और जब मां के गर्भ से बाहर आता है रोता हुआ तो उसको माता पिता सिखाते हैं, बोलो मामा पापा मामा पापा मामा पापा, तो बच्चा भी उसको अज्ञानता पर सिखाते हैं तो बच्चा ही बोलना शुरू करता है मामा पापा मामा पापा मामा पापा। तो मामा पापा का अर्थ क्या हुआ? मामा मीन्स मेरे, पापा मीन्स पाप। अज्ञानतावश माता पिता उसको सिखाते हैं, बोलो मामा पापा, बोले हाँ मामा पापा, मेरे पाप है जो आपके पास आया हूं, मेरे पापों का ही परिणाम है मैं आपका बेटा बना, बोले हाँ मामा पापा तुम्हारे ही पाप है और कुछ नहीं है। हम अपने पापों के कारण ये शरीर पाते हैं और कोई इसका कारण नहीं है। और कृष्ण भक्ति को छोड़कर जो भी कार्य कर रहे हैं वो पाप है। अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे तथा कथित पुण्य कार्य भी कर रहे हैं वो पाप है। देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करते हुए फांसी पर लटक गए, कितने महान व्यक्ति हैं। कृष्ण भक्ति नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं रास्कल। बहुत कन्विक्शन चाहिए इसके लिए। सारे के सारे जो आपकी गलत धारणाएं हैं प्रभुपाद चकनाचूर कर देते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा, सामाजिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से बहुत ही महान माना जाए, वो रास्कल धूर्त है, एक नंबर का। तो इस बात को हमें समझना है कि ये संसार पूरा पापमय है और इस संसार में कोई भी क्रिया शुद्ध नहीं है, सब क्रियाएं पाप से भरी हुई हैं। भगवद गीता में बताया गया इस संसार में कोई कार्य शुद्ध नहीं है। जैसे अग्नि हमेशा धुएं से ढकी रहती है, इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं वो पाप पूर्ण है। भागवतम दशम स्कंद में राजा मुचुकुंद की कथा आती है। काल्यावन का वध करते हुए भगवान काल्यावन का पीछा करते हैं तो भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में राजा मुचुकुंद विश्राम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से सो रहे हैं, क्योंकि राजा मुचुकुंद देवताओं की तरफ से युद्ध किया करते थे, बहुत थक गए थे। तो राजा मुचुकुंद जब जागते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो दोनों राजा मुचुकुंद आप अपना परिचय दीजिए। तो भगवान कहते हैं पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो राजा मुचुकुंद अपना परिचय देते हैं, फिर वो समझ आते हैं कि साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। फिर भगवान से वार्तालाप करते हैं और फिर भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम कभी भी मुझे मत भूलो, तो हमेशा मेरा स्मरण कर सकते हो। और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि मेरे प्रिय राजा, क्योंकि तुम पहले क्षत्रिय थे इसलिए तुम्हें पशुओं की हत्या की जो कि पाप है, इसलिए भक्ति योग का पालन करके पहले अपने पापों से निवृत्त हो जाओ। यानी कि भगवान के साक्षात दर्शन करने पर भी कृष्ण उनको बता रहे हैं, क्योंकि तुम क्षत्रिय थे और तुमने पशुओं की हत्या की थी, तुम पहले अपने पापों से मुक्त हो जाओ भक्ति योग का पालन करके। अर्थात क्षत्रियों को यह आज्ञा दी गई है कि वो पशु हत्या करें। आज्ञा दे जाने का अर्थ ये नहीं है कि वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए वानप्रस्थ की अवस्था रखी गई है कि ग्रस्त जीवन में एक धन कमाने के लिए, जीवन पालन करने के लिए कुछ ना कुछ, बिना पाप के हम रह नहीं सकते। इसलिए वानप्रस्थ बताया गया है कि वानप्रस्थ में व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए और इन पापों से मुक्ति पानी चाहिए। और अगर अब आज कलयुग में तो कोई वर्णाश्रम है नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्री प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण एक एंटीसेप्टिक के समान है। हम जितने भी पाप करके क्यों ना आए, कृष्ण के संपर्क में आते ही हम मुक्त हो जाते हैं। और देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितनी फैसिलिटीज हैं, कितनी। हम लोग जब संकीर्तन निकालते हैं, सड़क पर जाते हैं, तो हम वास्तव में लोगों को श्रद्धा बांट रहे हैं, लोगों को अज्ञात सुकृति बांट रहे हैं, जिसकी उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो और फिर वो श्रद्धा से नाम को स्वीकार कर सके। कोई भी व्यक्ति यहां पर आता है सुबह सुबह, मंगल आरती के बाद हम तुलसी आरती करते हैं और तुलसी की परिक्रमा करते हैं, यानी कानी चापा पानी ब्रह्म इत्यादि कानी चानी तानी प्रणश्यंति प्रदक्षिणा पदे पदे, कि तुलसी की परिक्रमा करने से ब्राह्मण जैसी हत्या के पाप, जो इंद्र जितने कितने पीड़ित हो रहे हैं, इंद्र ब्राह्मण की हत्या करके पासी उधर भाग रहे हैं, तुलसी की परिक्रमा करके ब्राह्मण की भी हत्या की है उससे भी मुक्ति मिल जाती है पापों से। श्रीमद भागवतम के ग्रंथ पर पढ़ रहे हैं कि अगर आप एक ग्रंथ इस कथा को सुनेंगे, सुनते ही हम सारे पाप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में कितना ऑस्पिशियस है। और अगर हम भक्ति में नहीं है तो हर वस्तु प्रवत कहते हैं इन ऑस्पिशियस है, अमंगलकारी है, कदम कदम पर हम पाप कर रहे हैं, पदम पदम यत विपदम। तो इस पाप कार्यों से हमें बचना चाहिए। और ये भोगने की प्रवृत्ति वास्तव में बहुत पाप बुद्धि है, और भक्ति में आने के बाद हमें इस पाप बुद्धि से, भोगने की प्रवृत्ति से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर भक्त लोग सब कुछ समझते हुए भी पाप क्रियाओं में लगे हुए हैं तो भक्त लोग पाप नहीं कर रहे बल्कि अपराध कर रहे हैं। भक्तों के लिए हमें बताया गया चार नियमों का पालन करना, चार महापापों से बचना, किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार पर पुरुष परिचय से किसी प्रकार का संबंध नहीं, और किसी प्रकार का नशा नहीं। अगर इन नियमों में थोड़ी सी भी ढील दे देते हैं तो हमारे लिए ये अपराध बन जाता है। हमारे लिए महापाप नहीं है, हमारे लिए ये अपराध है। और बहुत हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी ये भोगने की प्रवृत्ति बनाए रखना, तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज अपने प्राकृत रस से शुद्ध शुद्धि में बताते हैं कि ये अगर किसी के अंदर ये मानसिकता है कि वो भौतिक आसक्ति बनाए रखा है तो उसको कभी भी दिव्य नाम हृदय में प्रकट नहीं होगा, वो कभी भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं और मेरा की प्रवृत्ति से अगर हम अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हम कभी भी दिव्य स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। शिला रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं उनको शिक्षा देते हुए, भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मन है साधना करीले प्रेम उत्पन्न न है। अगर किसी के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा है या मुक्ति की भी इच्छा है तो वो प्रेमा भक्ति के स्तर पर कभी भी उन्नत नहीं हो सकता, चाहे कि वो दिखाने के लिए साधना भक्ति के सारे अंगों का पालन कर रहा है। भक्ति स्नान मार्ग बताते हैं कि भक्ति के 64 के 64 अंगों का भी कोई पालन क्यों ना कर रहा हो, अगर उसने अपने आप को भोगने की और मुक्ति की इच्छा से मुक्त नहीं कर रहा तो दिखने में पूरा बड़ी शक्ति से साधना भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है लेकिन उसके हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम भक्ति में आते हैं भोगने की प्रवृत्ति से, लेकिन ये भोगने की प्रवृत्ति बनाए ना रखें, इससे हमें अपने आप को मुक्ति पानी है। ये जो भोगने की प्रवृत्ति है इसको पाप बुद्धि बताया गया है, इससे क्या होता है हमारी श्रद्धा कमजोर होती है। हरि नाम की महिमा भी सुन रहे हैं नहीं, हरि नाम के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव नहीं है तो ये हरि नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। स्वल्प पुण्य मृतम राजन विश्वास नहीं जाते, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे। स्वल्प पुण्यम, जिसके पुण्य कम है उसको इन बातों में विश्वास नहीं होता, महाप्रसाद में, गुरु में, वैष्णव में, हरि नाम में, क्योंकि पाप किए हुए हैं और पुण्य कम है। येषां तु अन्तकतः पापा जनानां पुण्य कर्मणां, जिसके पाप समाप्त हो जाएंगे वही भक्ति दृढ़ता से कर सकता है। श्रील प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं कि पूर्व जन्म के पापों के कारण ही एक भक्त की, एक साधक की जिद्दी नेचर होती है। कई बार हम देखते हैं हमें आज्ञा भी मिलती है भक्त उसका पालन नहीं करते, बड़े जिद्दी नेचर है, तो जिद्दी होना ऑब्स्टिनेट नेचर पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। और कोई व्यक्ति अगर जिद्दी है और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा तो आप भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पाप में वृत्ति से मुक्ति पाना अति आवश्यक है, लेकिन ये अगर इस वृत्ति को हम बनाए रखेंगे तो बहुत खतरनाक है, इसके हमें तुरंत छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि हर एक नए साधक के अंदर ये वृत्ति बनी होती है और इसको छुटकारा पाना बहुत कठिन लगता है। हम लोग जो कुछ भी करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं, हम जब करते हुए सेवा मांग रहे हैं लेकिन जब करते हुए सेवा की भावना नहीं है, श्रवण करते हैं सेवा की भावना से नहीं कर पाते, कीर्तन करते हैं सेवा की भावना से नहीं कर पाते। तो वास्तव में दिखने में हम भक्ति के सारे 64 अंगों का पालन कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद सेवन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन अगर ये भोगने की प्रवृत्ति बनाए रखे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जैसे भक्ति स्नान महाराज उदाहरण देते हैं कि बारात जा रही थी, पूरी रात छप 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 करके नाव चलाता रहा नाविक, लेकिन सुबह क्या मालूम चला लंगर ही नहीं हटाया। तो हमें भी आवाज तो आएगी खूब हरी बोल हम कर रहे हैं, खूब हरे कृष्णा महामन चल रहा है, आसपास सब लोग सब इकट्ठे जा रहे हैं, लग रहा बड़ा अच्छा भक्ति चल रहा है, लेकिन आवाज ही आ रही गारी छप छप छप, लेकिन हम कुछ प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो इससे मुक्ति पाना बहुत आवश्यक है, और अगर इस भावना को हम बनाए रखेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति आ जाती है, हम झूठ बोलते हैं, हम अपराध करते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, किसी और भक्त को हम अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते, क्योंकि अपने अंदर ये भोगने की प्रवृत्ति है, मैं अभी भी राजा बनना चाहता हूं, मैं सेवक नहीं बनना चाहता। जबकि हमें कोई, अगर इस प्रवृत्ति से चलेंगे हमें कोई आध्यात्मिक साक्षात्कार भी नहीं होगा, कोई रियलाइजेशन नहीं होंगे। रियलाइजेशन हमारे हृदय में तब उत्पन्न होंगी जब हम निरंतर भगवान की सेवा में जुड़ेंगे दास की भावना से, कि हाँ मैं दास हूं, ये समझ कर, ये जानकर हम सेवा करेंगे तब हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक साक्षात्कार होंगे, और आध्यात्मिक साक्षात्कार से ही हमारा संबंध स्थापित होता है। अगर रियलाइजेशन नहीं है, कोई साक्षात्कार नहीं है भगवान की भगवत्ता का, भगवान की कृपा का, गुरु की कृपा का, तो आध्यात्मिक जीवन बहुत खोखला प्रतीत होता है। और ये रियलाइजेशन तब आती हैं जब हम सेवा में जुड़ते हैं निरंतर सेवा की भावना से, अपने आप को दास मान के। तो हमेशा हमें अपने आप को दास मानते हुए सेवा करनी चाहिए, हमारे अंदर ये दास की प्रवृत्ति इतनी गहरी होनी चाहिए कि हम अपनी गहरी नींद में भी कहीं सो रहे हों और कोई भक्त हमें उठाए और हमसे पूछे आप कौन हैं, तो हमें बोलना चाहिए मैं दास दासानुदास हूं। اتنا گہرا ہمارے اندر امپریشن ہونا چاہیے کہ میں داسوں کے داسوں کا داس ہوں. یہ کیول کہنے کے لیے نہیں, یہ پریکٹس کر کر کے ہمارے اندر یہ بھاونا آنی چاہیے. نہیں تو ہم اندر کی طرح بھاگتے رہیں گے, بھکتی بھی کر رہے ہیں لیکن پورن روپ سے ہم سنتوشٹی پراپت نہیں کر پائیں گے. تو اس مینٹلٹی کو بنائے رکھنا پرتیق سادھک کے لیے بہت خطرناک ہے. تو کیا کیا جائے؟ آج پیچھے بھگوت درشن میں ایک آرٹیکل پڑھ رہے تھے, اس میں بتایا جا رہا تھا کہ چائنیز بھاشا میں, چائنیز بھاشا سمبل لینگویج ہے, چنوں کے دوارا کمیونیکیشن کیا جاتا ہے, سمبلس. تو جو ڈینجر کا سمبل ہے, خطرے کا سمبل ہے, اس کا ارتھ خطرہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اپارچونیٹی بھی ہے, اوسر بھی ہے. یعنی ایک ہی سمبل سے, ایک ہی چن سے معلوم چلتا ہے کہ یہ سنکٹ بھی ہے اور ایک ہی چن سے معلوم چل رہا ہے یہ اوسر بھی ہے. یعنی کہ جو ہمارے لیے ڈینجر ہے وہ ہمارے آدھیاتمک جیون کے لیے ایک اپارچونیٹی بھی ہے, اوسر بھی ہے. تو واستو میں یہ بھوگنے کی پرورتی ہمارے آدھیاتمک جیون کے لیے خطرہ بھی ہے, لیکن اس کو ہم ایک اوسر اپارچونیٹی کے روپ میں اپیوگ کر سکتے ہیں بھکتی میں آگے بڑھنے کے لیے. کیسے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم چیتنیہ مہاپربھو کے آندولن میں جڑے ہیں. چیتنیہ مہاپربھو کا اوتار راکشسوں کا ودھ کرنے کے لیے نہیں, راکشسوں کی اس پاپ بدھی کا ناش کرنے کے لیے ہے. تو ہماری اس پاپ بدھی کا بھی ناش ہو سکتا ہے اگر ہم چیتنیہ مہاپربھو کے سنکیرتن آندولن میں اتساہ پوروک بھاگ لیں. تو ہمیں اتساہ پوروک بھاگ لینا چاہیے اور سنکیرتن میں ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے رام 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 ہرے ہرے. جیسے ہم دیکھتے ہیں, بتایا گیا ہے ہری نام چنتامڑی میں بھی بھکتی نو ٹھاکر بتاتے ہیں کہ اس پاپ بدھی سے مکت ہونے کا ایک مات طریقہ یہ ہے کہ گرو اور ویشنو کی کرپا, اور گرو اور ویشنو کی کرپا ہم ان کی سیوا کر کے پراپت کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں, ہم پرتی دن گاتے ہیں شری گرو کرونا سندھو ادھم جنار بندھو لوکے ناتھ لوکے را جیون, کہ جو گرو ہیں وہ ادھم جنار بندھو پتیتوں کے بندھو ہیں, تو میں بہت پاپ کرتا ہوں اور گرو مجھے معاف کر دیں گے. اگر ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم پاپ کر رہے ہیں اور بعد میں گرو کے سامنے جا کے ہم روئیں گے تو گرو تو بڑے کرپالو ہیں ہمیں معاف کر دیں گے, تو ایسا نہیں ہے. گرو کی کرپا بنا گرو کے آدیشوں کا پالن کیے ہمیں گرو کی کرپا کی اچھا رکھتے ہیں یا اپیکشا کرتے ہیں, یہ بھی پاپ بدھی کو بڑھاتا ہے. ہمیں آگیا کا پالن کرنا چاہیے. جب جگائی مدھائی کا ادھار چیتنیہ مہاپربھو نے کیا, جگائی مدھائی کے سارے پاپ مہاپربھو نے اپنے پر لے لیے. مہاپربھو کا پیت ورن شام ہو گیا, کالا ہو گیا, کیونکہ انہوں نے سارے پاپ جگائی مدھائی کے لے لیے اور انہوں نے بولا اس کے بعد اب اور کوئی پاپ نہیں. اور پھر یہ بتایا گیا چیتنیہ بھاگوت میں, اگر کوئی بھکت بھکتی میں آنے کے بعد گرو کی آگے کی اویلنا کر کے پاپ کرتا ہے تو اس سارے جگائی مدھائی کے پاپ اس کو لگ جاتے ہیں. تو ہمیں بہت گمبھیر رہنا چاہیے گرو کی آگے کا پالن کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ ہم نیم توڑ رہے ہیں اور وگرہ کے سامنے جا کے گرو کے سامنے جا کے رو کر معافی مانگ لیں گے پھر گرو معاف کر دیں گے پھر سے ہم پاپ کر لیں گے. نہیں, یہ پاپ بدھی ہے. ہمیں سختی سے نیموں کا پالن کرنا چاہیے اور کوئی ترٹی ہے تو اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. تو یہ پاپ بدھی جائے گی اگر ہم گرو اور ویشنو کی سیوا کریں گے. چیتنیہ بھاگوت میں ورنن آتا ہے دیوانند پنڈت کا. دیوانند پنڈت بھاگوتم کے پرکھار پنڈت تھے اور ان کو اپنے اندریوں میں پورا سنیم تھا, لیکن ان کے اندر بھوگنے کی پرورتی تھی, مکتی کی اچھا تھی. تو انہوں نے شریواس ٹھاکر کے پتی اپرادھ کیا, لیکن بعد میں وکریشور پنڈت ان کے گھر پہ رہے اور وکریشور پنڈت جب نتیہ کرتے تھے تو اتنے مد مست ہو جاتے تھے کہ ان کو معلوم نہیں چلتا کبھی وہ مورچھت ہو جائیں. تو دیوانند پنڈت پوری ان کی رکشا کرتے تھے, جو بھیڑ تھی ان سے ان کو بچاتے تھے, اور جب کبھی وہ مورچھت ہو بھی جاتے تھے تو دیوانند پنڈت ان کی پوری سیوا کرتے تھے. تو ان کی اس سیوا سے, کیونکہ انہوں نے ویشنووں کی سیوا کی, ان کی پاپ بدھی نشٹ ہو گئی اور پھر ان کی شردھا چیتنیہ مہاپربھو کے چرنوں میں جاگرت ہو گئی. تو جب ہم سیوا کرتے ہیں بھکتوں کی تو ہماری پاپ بدھی کا ناش ہوتا ہے, ہمارے اس بھوگنے کی پرورتی سماپت ہوتی ہے. گرو کی اور ویشنو کی کرپا سے ہی یہ پاپ بدھی نشٹ ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی پاپ ہوتا ہے تو ہمیں اس کا بہت پشچاتاپ کرنا چاہیے اور پشچاتاپ کر کے کھما کی یاچنا کرنی چاہیے اور پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے اور پشچاتاپ کریں اور دوبارہ سے یاچنائیں کریں اس ڈھنگ سے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ. اگر ہمارے اندر پربھوپاد کی آگیاؤں کا پالن کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی سنسیئرٹی ہے, وہ تھوڑی سی سنسیئرٹی ہمیں بچا لے گی. تھوڑی سی بھی سنسیئرٹی ہے کہ ہمیں پربھوپاد کے آندولن میں سیوا کرنی ہے और इस पाप बुद्धि से बचना है। अगर इतना भी हम प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से गुरु और वैष्णव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। और इसके साथ साथ जैसे भक्त लोग ग्रस्त लोग हैं वो अपने परिवार का पालन करते हैं, तो परिवार का पालन करने के कई प्रकार के काम धंधे करने पड़ते हैं, तो प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अपने और अपने परिवार का पालन करने के लिए हमें बहुत ही साधारण जीविका कमाने का साधन रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत तिकड़मबाजी हो, बहुत झूठ बोलना हो, बहुत धोखा देना पड़े, बहुत मिलावट करनी पड़े, बहुत रिश्वतखोरी ब्लैक मार्केटिंग करके हम बोले हाँ अब मैंने अपने परिवार का पालन कर लिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये पाप ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने धोती कुर्ता डाल लिया, तिलक लगा लिया, कंठी डाल ली तो भौतिक जगत की प्रकृति बदल जाएगी, हम ट्रांसेंडेंटल हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं और हम पापों से बच गए। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए मेरी जीविका का साधन कैसे है, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि चैतन्य चैतन्य में वर्णन आता है, नारद मुनि किससे मिले थे? मृगारी से, है ना। तो मृगारी पशुओं का शिकार करता था और ऐसे शिकार करता था कि उनको मारता नहीं था, उनको अधमरा छोड़ता था, और जब पशु तड़पते थे मृगारी हंसता था, उसको आनंद आता था। तो जब एक बार नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे और ऐसे पशु तड़प रहे थे तो नारद मुनि का हृदय पिघल गया, उनके हृदय करुणा जागृत हुई, बोले किसने ये किया है। तो हंसते हुए बहुत ही खूंखार शिकारी सामने आया, तो नारद मुनि बोला ठीक है आप पशुओं को मारना चाहते हो मार दो, ये भी अपराध है, लेकिन जिस ढंग से आप उनको अधमरा छोड़कर और उनको इतना पीड़ा दे रहे हो ये बहुत बड़ा अपराध है और इसका तुम्हें बहुत रिएक्शन मिलेगा। तो बोले ये तो मेरा खानदानी पेशा है, मेरे पिताजी ने सिखाया यही है। बोले खानदानी पेशा हो कुछ भी हो लेकिन आप इस पापों से मुक्त नहीं हो सकते। तो जब मृगारी वो शिकारी जो था इतना क्रूर था, जैसे ही नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आया उसको ये साक्षात्कार हो गया कि वो पाप कर रहा है। ये साक्षात्कार होना कि मैं पाप कर रहा हूं ये भी बहुत कठिन है। आप किसी बाहर के व्यक्ति को बोलोगे आप पाप कर रहे हैं, बोले कहां पाप कर रहे हैं, उसको लगेगा नहीं वो पाप कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों के संपर्क में आके हमें मालूम चलता है हमारी असली स्थिति क्या है। एक बार हम जब शुरू में आए तो किसी व्यक्ति को बोला कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कुछ दिनों के बाद आए मंदिर में बोला कैसा लग रहा है, मतलब बहुत टेंशन हो गया, जब से माला जप शुरू किया बहुत टेंशन हो गया। आपने बोला सारी टेंशन खत्म हो गई, मेरी टेंशन बढ़ गई है, बोले क्या, बोले अब जब से हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया है अब मुझे लगने लगा कि मैं कितना गंदा हूं, मैंने कितने गंदे गंदे पाप किए हैं, वो सोच सोच के मैं परेशान हो गया हूं। पहले मैं लगता था कि इस संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति मैं हूं, मन साफ होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, मेरा मन तो साफ है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। लेकिन जब से हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया मैं लगा कि मैं मेरा मन कितना काला है, मैं कितना गंदा हूं। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आप। तो जब प्रभुपाद जी कोई संपर्क में आता है तो हमें मालूम चलता है कि हम पाप कर रहे थे। इसी ढंग से मृगारी जब नारद मुनि के संपर्क में आया और नारद मुनि के वचन को सुना तो उसे लगा हाँ वास्तव में ये पाप है, तो सोचा अब इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो नारद मुनि बोला ठीक है छुटकारा पाना है तो एक कार्य करो, तुरंत इस धनुष को तोड़ डालो। अब सोचिए आप लोगों किसी कोई ऐसी फैक्ट्री हो जिससे कोई पाप कार्य होते हो और गुरु आए बोलो तुरंत फैक्ट्री बंद कर दो, कैसा लगेगा आपको, घबरा जाओगे, मैं मेरा परिवार सब कैसे, अब क्या बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल बात करो, इतने सालों से चलता आ रहा है, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूं, दान भी देता हूं, प्रसाद भी पाता हूं, सब कुछ ठीक तो करो, थोड़ा सा फैक्ट्री तो गड़बड़ा, क्या हो गया। नारद मुनि तुरंत बंद कर, तुरंत ध्वज तोड़ दो। तो मृगारी ने क्या किया, ठीक है मैं देखता हूं बाद में मिलेंगे, हैं आपसे सुन के बड़ा अच्छा लगा, सोचता हूं अभी पत्नी के बजा के कंसल्ट करता हूं, सोचता हूं आई विल कम बैक, बात करते हैं बाद में। मृगारी ने बिना सोचे दाग से धनुष तोड़ दिया और नारद मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने बोला कि मैं धनुष तोड़ दूंगा मेरा पालन कौन करेगा, नारद मुनि मैं करूंगा। नारद मुनि इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे, कोई मालूम है भगवान जरूर करेंगे, नारद मुनि खुद सन्यासी हैं इधर उधर घूमते रहते हैं वो कैसे पालन करेंगे, नारद बोले मैं करूंगा। तो प्रभुपाद वहां पे बहुत सुंदर उसके तात्पर्य पहली लाइन लिख रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं द सोर्स ऑफ आवर इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ आवर मेंटेनेंस। हमारे हम ये क्या सोचते हैं कि जो हम पैसा कमा के लाते हैं उसी पैसे से हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं धनुष उसके परिवार का पालन नहीं कर रहा था, कृष्ण उसके परिवार का पालन कर रहे हैं। शेषो चेतना नाम नित्यो नित्यानाम एको बहुनाम विद्धाति कामान, एक ही हैं जो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे अंदर, बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं जो कमाई करता हूं क्या करूं, अपने लिए थोड़ी पाप कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए पाप कर रहा हूं, परिवार के लिए पाप कर रहा हूं। तो हम सोचते हैं ये बहुत आवश्यक है, इसके बिना परिवार का पालन नहीं होगा। यहां पे मृगारी कह रहे हैं नहीं, नारद मुनि को समझा रहे हैं कि आप करिए, और बोला कि सब कुछ धनुष तोड़ने के बाद क्या करना है, केवल एक वस्त्र जोड़ी और जो आपने अभी तक धन कमा के रखा हुआ है सब ब्राह्मण और वैष्णव में बांट दो और अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले जाओ, वानप्रस्थ, एक तुलसी पौधा रखो और उसके सामने बैठकर क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद क्या होने लगा, पूरे गांव में खबर फैल गई, अरे वो शिकारी जो पशुओं को मारता था अब साधु बन गया, शिकारी बन गया संत है? और लोग आने लगे, लोग तरह तरह के खाद्य पदार्थ फल फूल लाने लगे, और फिर क्या हुआ, इतना ज्यादा होने लगा कि उसने फुटफॉल लाइफ शुरू कर दिया। दो लोग कितना खाएंगे, पूरे गांव में प्रसाद बांटने लगा। कहां से आ रहा है, उस संत से भेजा जा रहा है सबको। और बाद में आप कथा जानते हैं, नारद मुनि आते हैं अंगिरा ऋषि के साथ, वो चींटी को भी मारना नहीं चाहते, बाद में मृगारी इतने शुद्ध हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग भक्ति में जुड़े हैं तो अपने इस सिंफुल मेंटेलिटी को, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी को, जो हमारे अंदर भोगने की प्रवृत्ति है, जो कि एक बदजीव के अंदर स्वाभाविक है, क्योंकि बदजीव इस संसार में तभी आया कि वो भगवान से विमुख होकर भोगना चाहता है, और अब हम इसको बिल्कुल उल्टा करना चाहते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति में आना चाहते हैं, तो इसको इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। हालांकि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही महावदन्याय है, लेकिन महाप्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम इसके लिए प्रयास करें, और इस संकीर्तन आंदोलन में बहुत शक्ति है, जैसे हम संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे निश्चित रूप से हमारी प्रवृत्ति धीरे 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 समाप्त हो जाएगी, और गुरु अपनी कृपा से निश्चित रूप से इस प्रवृत्ति का खंडन करते हैं। लेकिन हमें इसको बनाए नहीं रखना, हमें अपनी जीविका का साधन बहुत ही सरल रखना है, अपने जीने का तरीका सिंपल लिविंग बहुत सरल रखना है, और नियमों का हमें सख्ती से पालन करना है, और नियमों के पालन करने की शक्ति भी हमें गुरु की कृपा से मिलती है। प्रभुपाद बताते हैं जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उसको स्वाभाविक शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो नियमों का सख्ती से आजीवन पालन करता रहे। अगर हमने गुरु दीक्षा के समय गुरु को दिए वचन आजीवन पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाएंगे, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं 16 वाला जब चार नियमों का आप सख्ती से पालन पूरे जीवन करते हैं तो निश्चित रूप से आप भगवत धाम जाएंगे। तो हम इसका पालन करें और हमेशा याद रखें कि कृष्ण हमारे साथ परमात्मा के रूप में है। बहुत पहले 1960s में एक पॉप सॉन्ग आया था, Someone is watching you, someone is watching you। याद रखो, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको देख रहा है। हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे हृदय में है, जो हमेशा हमें देखते रहते हैं। हम कभी भी अकेले नहीं हैं कि कुछ भी पाप कार्य कर सके, और हमेशा हम याद रखें कि गुरु हमारे साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं, तो हम पाप कार्यों से बच सकते हैं, और सादा जीवन जीते हुए और वैष्णवों से प्रार्थना करते हुए इस एंजॉइंग प्रोपेंसिटी को छोड़े। अन्यथा क्या होगा कि अगर इस सकाम इच्छाओं के साथ हम भक्ति करते हैं तो कितने, आप देखिए इंद्र को कितना भागना पड़ रहा है इधर उधर, और पितासुर आराम से भगवत धाम चले गए, और इंद्र यहाँ पे जीवित भी हैं, लेकिन इंद्र कितनी पीड़ा में यहाँ वहां भाग रहे हैं पापों से बचने के लिए, और उनकी कितनी दुर्दशा हो रही है। तो इस सबसे हम बच सकते हैं और शुद्ध भक्ति करने का हम प्रयास करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है यार? महाराज, यस महाराज, दे वॉज देयर बिकॉज अश्विनी कुमार दे वेंट टू दधीची मुनि टू हैव ब्रह्म ज्ञान, टू हैव द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, बट इंदिरा हैड कॉशन दधीची मुनि नॉट टू गिव दिस transcendental knowledge to the Ashwini Kumars, otherwise they'll become proud. And he said, if you give them the transcendental knowledge, I'll cut your head. So these two Ashwini Kumars said, okay, you give us transcendental knowledge, we'll replace your head. So then they put the head of a horse, and then they took the transcendental knowledge from the Dadichi. And when Indra came, he cut the horse head, and then afterwards this Ashwini Kumars put his head back. So that was the story.
Wonderful and ecstatic lecture. It was going non-stop from Yats to Goloka. The one thing, that humorous thing I can say is that hum paap se bhi bach sakte hain, aparap se bhi bach sakte hain, but management se bach nahi sakte.
cursing me or you care? It's a curse or a boon.
I'm saying because you said that Brigadi started Food for Life.
धन्यवाद. किसी और का भी प्रश्न है? थैंक यू. यस. भगवान के धाम जाना चाहते हैं.
ये मुक्ति की इच्छा है? ये
नहीं, मुक्ति की इच्छा नहीं है, ये विशुद्ध इच्छा है. नहीं, भगवान के धाम सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं, रिलैक्स करने के लिए नहीं है ना, कि बहुत हो गई फैक्ट्री में भागदौड़ हो गई, भगवान के धाम जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ऐश करेंगे. नहीं, तो वो नहीं, आज सेवा करने की इच्छा. फिर ठीक.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मैंने आपने बताया था कि द सोर्स ऑफ अवर इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ अवर मेंटेनेंस, लेकिन प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस. प्लीज एलैबोरेट करो जितनी थोड़ा अगर आप जान सकते. बिकॉज मेंटेनेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड इज मेनली कम्स फ्रॉम इनकम.
फ्रॉम इनकम.
हाउ इट इज, हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्ण.
बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसके ऊपर थोड़ी और टीका भी दी थी प्रभुपाद ने. कि उनका प्रश्न है कि हमने बोला एक सोर्स ऑफ इनकम, पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण पालन करेंगे. तो ये बड़ा सुनने में ठीक लग रहा है और बुद्धि कन्विंस हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है इसका अर्थ है? तो इसका मतलब ये नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ग्रस्त हैं वो चुपचाप मंदिर में आ जाएं और आराम से खाएं और सोएं, उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है. वन तो बचे नहीं, अपने गाड़ी तो वन में चला गया था, तो वन में जा नहीं सकते, अपने पतियों परिवार के साथ आराम से आ जाते हैं यहाँ पे और खाएंगे सोएंगे. प्रभुपाद कह रहे हैं ये उसके लिए वैलिड है जो पूर्ण रूप से सेवा में रत है. जो भगवान की सेवा में रत है उसके लिए पूर्ण रूप से भगवान उसका पालन करेंगे. जो सेवा में रत नहीं है तो उसको फिर अपना बचाव करना पड़ेगा. तो हम सेवा में रत होने चाहिए. जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, वृंदावन के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं. नहीं, हम लोग जाते हैं, हम आम मांगे, हमें आम नहीं आता, सेब नहीं आता. बोले कल्पिश गोस्वामियों के लिए, हमारे लिए नहीं है. जो गोस्वामी होगा उसके लिए कल्पवृक्ष है. अब गोस्वामी कोई मांगेंगे भी नहीं ऐसे तो, लेकिन जो गोदा तो उसको चाहिए, उसके लिए कल्पवृक्ष रहेंगे नहीं. तो ये इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बेसिकली इंजॉइंग प्रोपेंसिटी, एक्टिविटी से मतलब नहीं, हम कुछ भी कर रहे हैं भावराही जनार्दना. हम खाली भी बैठे हैं, भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, पाप नहीं कर रहा, लेकिन भोगने की प्रवृत्ति से बैठे हैं तो भगवान अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे. हम कुछ भी कर रहे हैं सेवा की प्रवृत्ति में कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई नौकरी में भी जा रहे हैं, लेकिन इस ढंग से कि मुझे सेवा में जुड़ना है, भगवान की सेवा के लिए है, तो निश्चित रूप से हमारा पालन होगा. तो उसमें हम नौकरी की अब सिलेक्शन भी कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि जिसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मेरे नियमों के पालन करने में कोई दिक्कत ना हो, भक्ति के नियमों, भक्ति को अच्छे ढंग से कर सकें तो वो करें. सरल जीवन.
बताया था कि हमारे पास टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं, उसकी वजह से हमें हमारा जो नेचर रिप्टी हो जाता है, नॉट एबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन. तो ये किन आचार्य ने बताया था और तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं अपने रिद्धि नेचर?
ये भागवत में 11 स्कंद के तात्पर्य में लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा उसमें, मैं बता दूंगा. और इसका तरीका वही है कि हम जैसे कितनी अज्ञात स्कृतियां बढ़ रही हैं, तुलसी महारानी की प्रतीक्षा कर ली, महावैष्णव के दर्शन कर लिए, उनके किसी ढंग से सेवा में जुड़े, तो हमें मालूम नहीं चल रहा. एक साधक की पूरी भक्ति अज्ञात सुकृतियों से ही चल रही होती है, क्योंकि फ्री में बहुत कुछ मिल जाता है हमें. लेकिन अगर हम जुड़ेंगे सेवा में तो सेवा करके ही हम इस पाप बुद्धि से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं. संकीर्तन आंदोलन में अच्छे ढंग से जुड़कर सेवा करके वैष्णव के. लेकिन अंतिम प्रश्न है लास्ट.
आप बता रहे थे मुचकुंद महाराज के कथा से कि मुचकुंद महाराज को और एक जन्म रुकना पड़ा धाम जाने के लिए, तो इससे क्या भगवान के संदेश से पता चलती है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के स्तर पर ना हो तो मुक्त नहीं हो पाए, क्षत्रिय स्तर पर वैश्य स्तर पर हो तो धाम नहीं जा सकता क्या?
ब्राह्मण नहीं, वैष्णव के स्तर पर आना पड़ेगा. तो उसके बाद मुचकुंज का अगला जन्म एक वैष्णव परिवार में होता है और केवल शुद्ध भक्ति करके फिर
कोई क्षत्रिय वैश्य के स्तर पर तो धाम डायरेक्ट जा नहीं सकता.
वैष्णव क्षत्रिय वैश्य भी हो लेकिन वैष्णव है तो जा सकते हैं. ठीक है, तो आप सबका बहुत धन्यवाद. ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम की जय. गुरु श्रील प्रभुपाद की. आनंद कोटि वैष्णव इनके निताय गौर प्रेम.